एहेस्केल अध्याय 28। अध्याय 28 में सोर के राजा की ओर ध्यान दिया जा रहा है। अध्याय 26 नगर की ओर, अध्याय 27 में उनके व्यापार के लिए भविष्यवाणी थी और अध्याय 28 में उसके राजा और हाकिमों के लिए भविष्यवाणी है। यहां अकस्मात ही वो शैतान को संबोधित करने लगता है जो पृथ्वी के राज्यों का सामर्थ है। बाइबल उसे संसार का राजकुमार कहती है। यदि कोई राष्ट्र और उसके शासक परमेश्वर को समर्पित ना हो तो शैतान उनको अपने वश में कर लेता है। हिटलर भी जादूगरों के वश में था। हिटलर की हार पर वे पेरू भाग गए थे और आज भी वहीं हैं। उन्होंने हिटलर को शैतान के अधीन करवा दिया था। एहेस्केल अध्याय 28 में सोर के राजा को झिड़की। एहेस्केल अध्याय 28 पद 1 और 2। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने मन में फूल कर ये कहा है, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। इसे पढ़ते ही हमें दूसरा तिस्लोनिकियों अध्याय 2 का ध्यान आ जाता है, जहां लिखा है कि क्रिस्त विरोधी आकर परमेश्वर के मंदिर में खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि वही परमेश्वर है और अपनी उपासना की आज्ञा देगा। ये अंतिम दिनों का दृश्य है। सोर का राजकुमार इस क्रिस्त विरोधी का प्रतीक है। तूने मन में फूल कर ये कहा, मैं ईश्वर हूं। वास्तव में ऐसा ही हुआ था। सोर के राजा ने ईश्वर की भूमिका अपनाई और अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया। उसने आज्ञा दी कि उसकी उपासना की जाए। एहेस्केल अध्याय 28 पद 3। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है। वो कहता था कि वो दानियल से अधिक बुद्धिमान है। यहां फिर से दानियल का उल्लेख आया है। वो एहेस्केल का समकालीन था। नबूकदनेस्सर के स्वप्न को बताने और उसका अर्थ निर्धारण करने के लिए दानियल उस क्षेत्र में विख्यात हो गया था। स्वप्न बताने और उसका अर्थ समझाने के बाद नबूकदनेस्सर ने उसे मुख्य वजीरों में नियुक्त कर दिया था। इस कारण वो दूर दूर तक जाना जाता था। दानियल क्योंकि एहेस्केल का समकालीन भी था, वो बार बार उसका उल्लेख करता है। यहां उसकी बुद्धि का उल्लेख किया गया है। एहेस्केल अध्याय 28 पद 4 और 5। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन क्रय विक्रय किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। बाइबल में लिखा है कि धनवान व्यक्ति का स्वर्ग में प्रवेश करना असंभव है। उसे व्याख्या स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। जो धन में भरोसा रखते हैं उनके लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 19 पद 24, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। बाइबल में लिखा है कि वे जो धनवान बनते हैं वे नाना प्रकार की परीक्षाओं और लालसाओं में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य की आत्मा को विनाश में डुबा देती है। बाइबल ये भी कहती है, धन की विपुलता हो तो भी अपना मन उसमें मत लगाना। सोर के राजा की यही समस्या थी। उसका मन उसके धन दौलत पर था। उसके पास धन धान्य की भरमार थी, जिसके कारण उसका मन घमंड से फूल गया था। एहेस्केल अध्याय 28 पद 6 से लेकर 10 तक। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक बलात्कारी है। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। तब क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा कि तू परमेश्वर है? तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं, मनुष्य ही ठहरेगा। तू परदेशियों के हाथ से खतनाहीन लोगों की नाई मारा जाएगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसे कहा है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, उसके विनाश की भविष्यवाणी। जब बैरी आएगा, तब तू चाहे उसे स्वयं को ईश्वर बताए, उसे प्रभावित ना कर पाएगा। तू मनुष्य की मौत ही मरेगा। एहेस्केल अध्याय 28 पद 11 और 12। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। यहां अकस्मात ही परिवर्तन आया है और वो शैतान की चर्चा कर रहा है। बाइबल में शैतान का वर्णन सबसे सजीव वर्णन है। ये वर्णन उसके विषय हमारी धारणा से एकदम भिन्न है। यहां वो विचित्र प्राणी नहीं, अपितु रूपवान दर्शाया गया है। एहेस्केल अध्याय 28 पद 12 में आगे लिखा है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, अर्थात तू सब कुछ है, तुझे सब कुछ प्राप्त है, अर्थात तू सर्वे सर्वा है। एहेस्केल अध्याय 28 पद 12 और 13। तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर के एदन नाम बारी में था। जी हां, वो वहां था और हव्वा को बहका रहा था कि वो परमेश्वर द्वारा वर्जित फल को खा ले। एहेस्केल अध्याय 28 पद 13 में आगे लिखा है, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। ये शैतान के उस समय का वर्णन है जब उसका पतन नहीं हुआ था। पतन के बाद वो आदन की वाटिका में था। प्रत्येक कीमती पत्थर उसके आवरण में थे। कुछ विचारकों का कहना है कि शैतान संगीत का प्रवर्तक है, क्योंकि लिखा है, जिस दिन तू बनाया गया, उस दिन संगीत के साज तुझी में बनाए गए थे। मेरे विचार में तो ये वर्णन कुछ हद के पार ही है। मैं तो ऐसी व्याख्या को स्वीकार नहीं करता जो बाइबल के पद को काल्पनिक रूप प्रदान करे। वो कैसे संगीत का स्वामी हो सकता है? इसका अर्थ तो ये हुआ कि संगीत शैतानी प्रतिभा है। ये तो वचन का विकृत करना हुआ, परंतु ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो बाइबल के किसी पद को लेकर अपना सिद्धांत प्रतिपादित कर देते हैं और फिर एक प्रभावी उपदेश तैयार कर लेते हैं। अभी हाल ही में किसी ने इस पद का संदर्भ देते हुए एक पुस्तक लिखी और ये सिद्ध किया कि पॉप म्यूजिक शैतान की देन है। यदि वे बाइबल से ऐसी बात सिद्ध करते हैं तो मेरी समझ में वे बड़े अच्छे जादूगर हैं। एहेस्केल अध्याय 28 पद 14। तू छाने वाला अभिषक्त करूब था। करूब भी स्वर्गदूत है। बाइबल में चार करूबों का उल्लेख है जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि शैतान भी अभी परमेश्वर के सिंहासन के पास था। उसका स्थान स्वर्ग में बहुत ऊंचा था। उसके ऊंचे स्थान का अनुमान मूसा की लोथ पर माइकल के साथ विवाद द्वारा ही लगाया जा सकता है कि माइकल ने कहा, परमेश्वर तुझे झिड़के, अर्थात माइकल भी उसकी पूर्व प्रतिष्ठा का ध्यान रखता है। यही कारण है कि एहेस्केल इसे अभिषिक्त करूब कहता है। एहेस्केल अध्याय 28 पद 14 और 15। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीके चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु शैतान परमेश्वर के तुल्य नहीं है, क्योंकि उसे भी परमेश्वर ने बनाया था। परमेश्वर तो अनादि अनंत अस्तित्व रखता है, अतः हम शैतान को परमेश्वर का प्रतिद्वंदी ना समझे। वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है, परंतु वो उसके तुल्य नहीं है। हमारी भूल प्रायः यही होती है कि हम इसे परमेश्वर के विरुद्ध बराबर की शक्ति समझते हैं। शक्ति और सामर्थ में ना तो कोई परमेश्वर के तुल्य है और ना ही कोई उसके तुल्य विरोधी है। वो अद्वैत है और अनादि तथा अनंत है। यदि हम शैतान की तुलना करें तो वो माइकल या जिब्राइल के तुल्य है, क्योंकि ये दो स्वर्गदूत ही स्वर्ग में सबसे अधिक सामर्थी प्रतीत होते हैं, पर वे परमेश्वर के लिए वफादार हैं। अतः शैतान को परमेश्वर के बराबर समझना भी अत्यधिक खतरनाक बात है। अपराध के आने तक वो पूर्णतः शुद्ध था। उसका अपराध क्या था? देखिए यशाया 14 अध्याय 12 से लेकर 14 तक में, जहां वो शैतान से कहता है, हे भोर के चमकने वाले सितारे, तू क्यों आकाश से गिर पड़ा है? तू तो मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। उसके पांच मैं ही उसका अपराध थे। शेक्सपियर अपने एक नाटक में कहता है, लालसा से दूर भाग, क्योंकि इस पाप के कारण स्वर्ग दूतों का पतन हुआ था। शैतान के मन में लालसा ने जन्म ले लिया था, मैं। इस समय तक वो हरेक रूप में सिद्ध था। एहेस्केल अध्याय 28 पद 16 और 17। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीके चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। यदि हम लौटकर यशया 14 में जाएं, तो शैतान का वहां बड़ा रोचक वर्णन है। एक दिन हम अवश्य उसे देखेंगे और हमें उसे देखकर बड़ा अचंबा होगा। देखिए पद 14 से लेकर 16 तक, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की ताह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था? यही वो था क्या जिसने मेरा जीना कठिन बना दिया था? मैंने तुझे पृथ्वी पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। वो दिन आएगा जब दृश्य बड़ा ही विषमकारी होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर ने शैतान को कब बनाया? दूसरा, ये शैतान का पतन कब हुआ? ये तो निश्चित है कि उसका पतन होने के बाद ही वो आदन की वाटिका में आया, जहां उसने हव्वा को बहकाया था। अतः मेरा निष्कर्ष ये है कि उसका पतन उत्पत्ति पहला अध्याय तीसरे पद से पूर्व हुआ था। पद तीन से परमेश्वर सृष्टि का काम फिर से आरंभ करता है। उजाला हो, वहां लिखा है कि पृथ्वी पर चारों ओर अंधेरा था। परमेश्वर तो ज्योति है, तो ये अंधेरा कहां से आया? यही शैतान का अंधेरा था, क्योंकि वही अंधकार का राजकुमार है। एक सिद्धांत है जिसे अंग्रेजी में गैप थियरी अर्थात अंतराल का सिद्धांत कहते हैं। हाल ही में इसके विरोध का प्रयास किया गया है, परंतु मैं इसे स्वीकार करता हूं। इसके खंडन में जो प्रतिवाद है वो है, 6 दिन तो तू काम करेगा, परंतु 7वें दिन तू विश्राम करना, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। इसका अर्थ ये हुआ कि सृष्टि की रचना 6000 या 6000 गुना 10 वर्ष पहले हुई थी। हम इस बात का भी खंडन नहीं कर सकते हैं, ऐसा होना अति संभव है। अब आप कहेंगे, अवशेषों की व्याख्या कैसे की जाए, क्योंकि उनकी अवधि तो लाखों वर्ष की है। इस समय निर्धारण पद्धति को चुनौती देने का सबसे पहला तर्क है कि 1973 में फटे किलाउआ हवाई के ज्वालामुखी का लावा 3 भिन्न भिन्न प्रयोगशालाओं में भेजा गया। उन्होंने उसकी अवधि 18 करोड़ से 25 करोड़ वर्ष पूर्व की बताई। इस समय निर्धारण पद्धति में आपको अनुमान लगाना पड़ता है कि अनुपात की दर से कितना कार्बन होगा, अतः ये एक अनुमान मात्र ही है। दूसरा प्रतिवाद यह है कि जब परमेश्वर ने आदम की रचना की थी तब उसकी आयु क्या थी? आप कहेंगे वो 1 दिन का था, तो क्या उसके दांत थे? जी हां, उसके दांत थे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आदम में अवधि निर्धारण कारक थे। इस प्रकार यदि आपके सामने आदम लाया जाए तो आप निश्चय ही कहेंगे कि वो लगभग 30 वर्ष का तो होगा। कहने का अर्थ यह है कि उसके दांत थे, उसकी हड्डियां पूर्ण विकसित थी, उसकी मांस पेशियां पूर्ण विकसित थी, तभी तो वो 30 वर्ष के लगभग होगा। अब सोचिए कि क्या उसमें अवधि निर्धारण कारक उपस्थित नहीं होंगे? परमेश्वर ने उसे इस स्थिति में रचा जब वो एक अवधि पार कर चुका था। वो शिशु रूप में नहीं रचा गया था, इसलिए उसमें उम्र बढ़ने के कारक थे। हम जानते हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि उसने पृथ्वी की रचना उन अवशेषों के साथ ही की। अब यदि हम कहें कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और उसके साथ सब कुछ जो उसमें था, जो इसका अर्थ ये हुआ कि इसी समय में उसने शैतान को भी बनाया, तब शैतान का पतन कब हुआ? वो आदन की वाटिका में इतनी जल्दी कैसे आ गया? मेरे विचार में अंतराल सिद्धांत का अपना महत्व है, और पेम्बर ने इसे अपनी पुस्तक अर्थ्स अर्लीएस्ट एजेस में बड़ी अच्छी तरह पेश करता है। अब हम उत्पत्ति अध्याय एक एक को सृष्टि का सच्चा विवरण मान लेते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये आदि कितने वर्ष पहले था, कितने करोड़ वर्ष पहले, उसकी तारीख तो दी नहीं गई है। हो सकता है कि उस समय पृथ्वी पर शैतान का राज्य था, अर्थात तब जब वो अभिषिक्त करूब था। जब उसमें अपराध पाया गया तब उसका पृथ्वी पर से बहिष्कार किया गया और पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब आता है पुनः सृजन, जो पद तीन से आरंभ होता है कि वो मनुष्य का वासस्थान हो। अब ये हो सकता है कि ये अवशेष जो हम आज खोज में पाते हैं वे पृथ्वी के पुनः सृजन से लाखों वर्ष पूर्व के हो। अतः हम नहीं जानते कि वो आदि कितने करोड़ वर्ष पूर्व था। उत्पत्ति अध्याय एक एक, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। शैतान का आदन की वाटिका में होना, गहरे जल पर अंधियारा होना इस अंतराल सिद्धांत का समर्थक है। इसी समय शैतान का पतन हुआ और पृथ्वी का विनाश हुआ तथा उसमें उतल पुतल हुई। पद दो का शाब्दिक अर्थ होगा पृथ्वी वीरान और उजाड़ हो गई, क्योंकि वीरान और उजाड़ परमेश्वर की सृष्टि में नहीं आते हैं। जब परमेश्वर ने उसे बनाया था तब वो सिद्ध सृष्टि थी। परमेश्वर ने सब कुछ देखा और कहा अच्छा है। अतः बेडौल और वीरान सृष्टि परमेश्वर की अच्छी सृष्टि के साथ मेल नहीं खाती है। इस प्रकार अंतराल सिद्धांत के पक्ष में प्रभावशाली विवाद है, इसलिए मैं इसका परित्याग नहीं करता हूं। सृष्टि के विषय में मैं अपने विचारों को सीमित नहीं रखता हूं। ये मेरी उस फाइल में है जिस पर लिखा है अधिक जानकारी हेतु प्रतीक्षा कीजिए। मुझे ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि पृथ्वी 6000 या 10000 वर्ष पूर्व रची गई, परंतु मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि पृथ्वी करोड़ों वर्ष पूर्व सृजी गई थी और उत्पत्ति एक और दो के बीच में लंबा अंतराल है। जब शैतान की रचना की गई और उसका पतन हुआ, शैतान के विद्रोह के कारण पृथ्वी पर विनाश आया कि वो बेडौल और सुनसान हो गई। अतः हम इस विषय पर अटल सिद्धांत मन में नहीं बना सकते। एहेस्केल अध्याय 28 पद 18, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, सो मैंने तुझमें ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। शैतान अंततः आग की झील में डाला जाएगा। यहां इसी का उल्लेख है। आज तो शैतान को पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है, परंतु परमेश्वर ने उसकी स्वतंत्रता की सीमाएं बांध रखी है। वो उन्हीं के भीतर काम करता है। आयुब के बारे में ध्यान कीजिए। शैतान ने परमेश्वर से आयुब के विषय में कहा, तूने उसके चारों ओर बेड़ा बांध रखा है, मैं उसके निकट नहीं जा सकता। यहां एक प्रमाण है कि शैतान अपनी इच्छा से हर काम करने में असमर्थ है, परंतु मेरे विचार में उसे बहुत अधिक स्वतंत्रता मिली हुई है। यीशु जब फिर से आएगा तब शैतान को वो बांध कर अधोलोक में डाल देगा। ये अतः कुंड है, वो वहां 1000 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद वो फिर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाएगा कि वो लोगों से छल करें और प्रभु का विरोध करें। ये इसलिए कि परमेश्वर जब अंतिम न्याय करे तो निष्पक्ष कहलाए। कारण यह है कि कुछ लोग उस युग में भी जीवित रहेंगे तथा कुछ लोग उस युग में जन्म लेंगे। इन लोगों ने मसीह को अपना जीवन समर्पित नहीं किया होगा, परंतु उन्हें धर्मी जीवन व्यतीत करना होगा। उनकी अपनी इच्छा नहीं होगी, इसलिए उन्हें अपनी मन की इच्छा पूरी करने का अवसर दिया जाएगा। परमेश्वर का तब भी विरोध होगा। इस अंतिम विरोध के अंत में शैतान को नरक में डाल दिया जाएगा, जो अग्नि कुंड है। यहां यही कहा गया है, एहेस्केल अध्याय 28 पद 19। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया ना जाएगा। स्वतंत्रता का अंत हो जाएगा। अब वो सोर नगर उसके राजा या राजकुमार से हटकर उसके पड़ोसी देश सिदोन के लिए भविष्यवाणी का वचन देता है, एहेस्केल अध्याय 28 पद 20 से लेकर 24 तक। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख सिदोन की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हे सिदोन, मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। जब मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मैं उसमें मरी फैलाऊंगा और उसकी सड़कों में लहू बहाऊंगा और उसके चारों ओर तलवार चलेगी, तब उसके बीच घायल लोग गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और इसराइल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां उनके साथ अभिमान का बर्ताव करती है, उनमें से कोई उनका चुभने वाला कांटा, वो बंधने वाला शूल फिर ना ठहरेगी। तब वे जान लेंगी कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। देखिए, यहां सिदोन के अनंत विनाश की भविष्यवाणी नहीं है। ये नगर आज भी अपने प्राचीन स्थान पर बसा हुआ है। एहेस्केल अध्याय 28 पद 25 में परमेश्वर अपनी प्रजा इसराइल के पुनः इकट्ठा करने की भविष्यवाणी देता है, एहेस्केल अध्याय 28 पद 25 और 26। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं इसराइल के घराने को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा जिनके बीच वे तितर बितर हुए हैं और देश देश के लोगों के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा, तब वे उस देश में वास करेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया था। वे उसमें निडर बसे रहेंगे, वे घर बनाकर और दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे। तब मैं उनके चारों ओर के सब लोगों को दंड दूंगा जो उनसे अभिमान का बर्ताव करते हैं। तब वे जान लेंगे कि उनका परमेश्वर यहोवा ही है। ये परमेश्वर के राज्य के युग के बारे में है, जब परमेश्वर समस्त जातियों का न्याय करेगा कि उन्होंने यहूदियों के साथ कैसा व्यवहार किया।